बाद जैसे हाजिरी है उसकी के पेपर में हाजिर हुआ था और यहाँ से पारित होकर वो भाई साहब के यहाँ पहुँचे। इब्राहिम भाई वहाँ तकरीर फरमा रहे थे और सामीन में उनके दो दोस्त थे, एक हजरत मौलाना इब्राहिम साहब पांच भाया और एक दूसरे पंजाब के मौलाना साहब थे, वो उनकी तकरीर का लुत्फ उठा रहे थे। और जो बकवास मैंने किया था उस पर इब्राहिम भाई का तबसेरा हो रहा था और मैंने बयान किया था तो उसमें गालिबन गुज़िश्ता कल वहाँ बाटले के जलसे में इमामुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी का और हमारे बाद बुजुर्गों का मिजाज मैंने जिक्र किया था दुनिया के बारे में कि हमारा और उनका फर्क यह है कि दुनिया हमारे साथ खेलती है और उनका मकाम यह था कि दुनिया को गेंद बनाकर वो खेलते थे। और मैंने अर्ज़ किया था उस वक्त के हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे परहेज़ किया, इज्तनाब किया कि कोई ज़ाती मकान बनाए। बहुत पेशकश हुई पूरे पाकिस्तान में, वाहिद शख्सियत थी हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की, पहले नंबर पर हजरत का मुकाम था। लेकिन हजरत के सामने दुनिया आती रही और उसे ठीक मारते रहे। और यहाँ माशाल्लाह ग्लासगो के हजरात भी हैं, जिस तरह ये इज्तम है इस तरह वहाँ पिछले हफ्ते ग्लासगो के मुजाफात में एक पौश इलाका है वहाँ डॉक्टर साहिबान ज़्यादातर रहते हैं, तो उन डॉक्टर हजरात की तबलीगी जमात ब्लैकबर्न पहुँची हुई थी। उनमें से हजरात ने मुझसे फ़ोन पर रब्ता किया कि उन्हें मुझसे मिलना है, वो तशरीफ लाए उनमें से कुछ हजरात, तो उनको मैंने चौधरी शाहीन साहब नवरल्लाह मरकज़ की इनायत करदा ग्लासगो की रिवर के किनारे की इमारत जिसमें मस्जिद हुआ करती थी, वहाँ एक इज्तिमा रखा गया था। तो मैंने उनको वाकया सुनाया कि किसी तबलीगी इज्तिमा के बाद किसी साहब ने हज़रत शेख नवरुल्लाह मरकज़ोहू को अपने ख़त में शिकायत लिख दी। उसमें लिखा कि अगर यहाँ इज्तिमा हुआ मुमकिन है तो उन्होंने तो अपने तौर पर कारगुजारी के तौर पर तफसील लिखी होगी, उसके ज़िमन में शिकायत का पहलू भी कुछ नमूदार हो गया। उन्होंने लिखा कि अगर यहाँ इज्तिमा हुआ, बहुत सारे लोग आए नमाज के लिए, बैठने उठने के लिए, मेहमानों को نماز میں جب اس لیے بھی لائن میں وضو کے پانی کی بھی قلت ہو گئی اور بہت سے حضرات کی نماز بھی قضا ہو گئی تو حضرت شیخ نور اللہ عمر قدہو نے اس کے جواب میں تعریف فرمایا تھا ان صاحب کے نام گرامی نامہ اور میرے واسطے سے بھجوایا تھا تاکہ میرے ذہن میں بھی رہے کہ ایسا وہاں کیوں ہوا. میں تو خود اس میں موجود تھا اور مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے اسے بھی کہا کہ آپ کچھ نصیحت کر لیں. تو میں نے انسان کی حقیقت بتائی تھی کہ یہ جو میں تو یہ حضرت شیخ قدسی روح تکبر فخر انانیت میں آنا عربی میں آنا میں اس کو اردو والوں نے بنایا. اس میں انانیت بہت ہے, کسی میں کیوں نخوت بڑائی ہو مزاج میں اس کو کہتے ہیں انانیت. تو یہ جو انا ہے اس کے خلاف حضرت شیخ قدسی روح بخاری شریف کے درس میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیاروں انا میں کبھی نہ کہنا. اسی لیے حضرت مولانا حلیمیہ صاحب نور اللہ مرتضی کی جو سوالیں لکھی گئی اس میں حضرت کی خوبیوں میں سے ایک کلمے کے متعلق خاص طور پر ان کا امتیاز لکھا گیا کہ حضرت کی زندگی بھر حضرت کی زبان پر یہ کلمہ نہیں آیا کہ یہ میں نے کیا, میں نے دیا, میرا مدرسہ, میرا. وہ تو فقیر کچھ ابھی میں نے ہمارے دوست وہاں لگے تھے لکھنؤ کے کتب خانے کے 50 برس تک ناظم رہے, ناظم کتب خانہ, پیاری شخصیت, پھول جیسے انسان حضرت مولانا ہارون اندوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شیخ قدسی روح کی حیات میں بھی ہم نے انہیں دیکھا. حضرت کے وصال کے بعد انہوں نے حضرت پیر صاحب کا دامن تھامے رکھا, اس حال میں بھی دیکھا کہ پھول جیسے انسان. اسی لیے ابھی تو ان کے چہرے پر ایک بال بھی شاید داڑھی کا نہیں آیا تھا جب فارغ ہو کر یہاں سے پہنچے سہارنپور سے لکھنؤ. حضرت مولانا معین اللہ صاحب کو کہہ کر کے جو سب سے قیمتی جگہ ہوا کرتی تھی ندوۃ العلماء لکھنؤ کی, وہ ندوۃ العلماء کا کتب خانہ تھا. اتنا زیادہ قیمتی تھا جیسا کہ پاکستان میں دھیمی طور پر وہاں کا رنگ بدلتا رہا, کبھی کیسا رنگ ہے, کبھی کیسا رنگ ہے, اوپر نیچے, کبھی بہت اوپر, کبھی بہت نیچے, بدلتا رہا. ایک دفعے حالات بگڑ ہوئے مدارس کے متعلق, نہ معلوم کس کا دور حکومت تھا کہ انہوں نے مدارس کے خلاف ایک مہم چلانی شروع کی. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف بنوری اکبر اللہ مرتضہ کو جب خطرہ ہو گیا خدا نہ خواستہ کچھ ہونے والا ہے, تو حضرت کے خدام بتاتے ہیں کہ حضرت کو کسی چیز کا فکر نہیں تھا حضرت نے سب سے پہلا اپنا کتب خانہ منتقل کرنا شروع کیا. لیکن جتنی دفعہ بھی ایسا ہوا تو اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت رحمتوں کے دروازے پہ کھول گئے. تو یہ اسی لیے تھا کہ بہت بڑا مدرسہ حضرت نے تنہا تنہا اپنا قیمتی وقت اور اپنی جوانی صرف کر کے وہاں بندوری ٹاؤن میں سے بنایا تھا. اس میں فکر تھا تو مکتبہ لائبریری. تو اسی طرح یہ حضرت مولانا ہارون صاحب حضرت مولانا علی میاں صاحب نبر اللہ مرکز کو اتنے پیارے لگے کہ وہ کتب خانہ ان کے حوالے کر دیا. ہمارے ساتھ فارغ بیٹھتے تو ہم ان سے کہا کرتے تھے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کے کچھ واقعات سناؤ, کچھ حالات سناؤ. تو عجیب و غریب واقعات وہ سناتے تھے. واقعات تھے بھی ایسے حضرت مولانا علی میاں صاحب جیسا کہ ان کی سوانح نگار نے ان کے مطابق لکھا کہ انہوں نے عمر بھر کبھی میں نہیں کہا کسی بھی چیز میں اپنی طرف کسی چیز نسبت اپنی توہین سمجھا. ضرورت تو پیش آتی ہے تو اس گلے میں تو انہوں نے بدل رکھا تھا ہمیں, ہم سب کو شامل کرتے تھے. میں نے میرے بھائی جان نور اللہ مرتضی کی مثال کے بعد کتاب لکھی بھائی جان کے حالات پر, اس کا نام رکھا میرے بھائی جان. ہمارے خالہ بھائی جو خاندان میں سب سے بڑے تھے ابھی قریب 95-96 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا 1-2 سال پہلے. تو ان سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کتاب کا نام لیا, روتے رہے دیر تک, پھر فرمانے لگے کہ میرے بھائی جان نہیں ہمارے بھائی. کیونکہ میں نے اپنی طرف نسبت کی کہ میرے بھائی جان, انہوں نے کہا ہمارے بھائی جان. تو سنانا مقصود تھا کہ جو رنگ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں قبض کیا تھا, اس کا نتیجہ تھا کہ مولانا ہارون ان کے خادم خاص فرماتے ہیں کہ حضرت کی جیب میں عمر بھر کبھی 5-10 روپے کا نوٹ بھی نہیں رہا, کبھی رکھتے ہی نہیں. کتنی نفرت ہوئی, نفرت دلانے کے لیے حضرت شیخ کو دیسی لوگ کی جیب یہاں ہوا کرتی تھی جہاں ہم بٹن لگاتے ہیں. تو حضرت جب انما اموالکم واولادکم فتنہ یہاں پہنچتے تھے تو حضرت جیب پر ہاتھ مار کر فرماتے تھے کہ جب تک اس میں کچھ نہ ہو وہاں تک توکل نہیں ہوتا, خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا. اس میں کچھ ہوتا ہے تب اللہ پر اعتماد ہوتا ہے. اور پھر فرماتے تھے کہ یہ تو توکل کیا نشہ ہے. اور پھر فرماتے کہ 100 کے نوٹ میں اس قدر نشہ اور اس سے زیادہ ہو تو اسی قدر زیادہ نشہ. ایسے اکابر کی صحبت میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رہے تو ساری عمر کے لیے مولانا ہارون فرماتے ہیں کہ ان کے جیب میں کبھی 5-10 کا نوٹ بھی نہیں ہوتا اور ان کے گھر میں بھی نہیں ہوتا. ہماری طرح سے گھر تمام ضرورت کی چیزوں سے بھرا ہوا ہو भाषा और कला है, दे हो ही नहीं सकता, बिल्कुल खाली हो गया। और जरूरत तो पेश आती है, सारी दुनिया के इमाम वहाँ, अभी चंद साल पहले मलिक पाक के ज़माने में बैतुल्ला की जुजी तौर पर तामीर पहले होती रहती थी, कभी ये हिस्सा कभी वो हिस्सा मरम्मत किया गया, तो उन्होंने सारे काबा की चारों तरफ की ऊपर नीचे बुनियादों से लेकर ऊपर तक करना लेकर तमाम चीज़ों की तामीर की ठान ली और चारों तरफ पर्दा लगा दिया और वो तामीर दो तीन साल तक जारी रही। काबे का ये काम सारा मुकम्मल हो गया और इफ्तिताह के लिए मंच पर पहुंचे और गली ने बढ़ता है हरम में बैतुल्लाह की चाबी लेकर शैवी खानदान के रुकने तकी वो पहुंचे तो मलिक पहाड़ ने इशारा फरमाया कि ये चाबी काबा शरीफ का दरवाज़ा खोलने के लिए हज़रत मौलाना अली मियां साहब को दिया दी जाए। और हज़रत मौलाना अली मियां साहब ने चाबी ली और काबे को खोला। तो ये मुकाम इसके बावजूद मौलाना हारून साहब फरमाते हैं कि हमेशा का यह किस्सा होता था कि हज़रत तैयार होकर स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और किसी को इशारा करके बुलाया, कान में कह रहे इधर आओ, दिल्ली तक के टिकट के पैसे कितने होंगे, वो जरा मैं आपकी जेब में किसी से वो कर्ज लेकर जाता। फरमाते हैं क्योंकि कोई मेहमान आ गए हैं तो चाय का इंतज़ाम करना है, कोई मशरूम पिलाना है, कोई ठंडा गर्म पिलाना है, कहते कुछ नहीं होता था। तो फरमाते हैं कि मेरे कान के करीब चोट ला करके फरमाते हैं कि मेरे एक रुपया होगा कि जब कितना बड़ा इमाम और किस कदर उन्हें दुनिया से नफरत, तो ये नफरत उन्होंने सीखी थी हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से। और हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत के ज़माने में तो वो वाकिफ थे और थे वाकिफ क्या इल्म क्या रूहानियत के सबसे ऊँचे मुकाम पर, इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ वजल ने इंतकाल के बाद दुनिया को दिखाया कि अहमद अली क्या थे। खुशबू फूटना शुरू हुई, तवील अरसे तक जैसा कि चौधरी शाहीन साहब अपने उस्ताद ने मोहतरम हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा सुनाया करते थे कि उनको हमने दफन किया, कई साल के बाद कोई ज़रूरत पेश आई या इत्तेफाक किया, वो बराबर में कहीं खबर खोली जा रही थी, हावड़ा किसी का गलती से उनकी खबर में लग गया तो खबर खुल गई। तो शाहिद साहब का बयान है कि हम सब ने सारे मजमे ने देखा कि जिस तरह अभी दफन किया, कहते हैं उनका दफन जिंदा हुआ था, कोई चीज़ बिल्कुल करो दादा उनकी मई इसी तरह। तो इसीलिए मुझे जब कहा गया वहाँ इज्तिमा में उस वक्त बयान के लिए, तो मैंने उस वक्त यही कहा था कि ये जो मैं हम करते हैं तो मैं कौन है, यूसुफ इब्राहिम मूसा दाऊद, ये तो ये आगे जिसम तो कब्र में फेंक दिया जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, माशाल्लाह अम्बिया अलैहिस्सलाम शुहदाए किराम औलियाए इज़ाम उलमाए किराम बहुत सारे उस्तादे किराम उनकी खुसूसियत के मिट्टी उनके जिस्म को नहीं खा सकता। बदलावत को रोकना हो जाए। तो असल जो नाम है वो उस रूह का है जो प्रवास करके चली जाती है, जिसे इस रूह को इस खाने पीने मकान किसी चीज से कोई सरोकार नहीं, बस उसी के लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल ने यह कुरान करीम उतारा। अनवा व अकसाम के जरिए इंसानों को समझाया अपनी वहदानियत, अपनी तौहीद वहदहू ला शरीक की मोहब्बत की तरफ दावत दी गई। लेकिन हम हैं ये सारा कुरान एक तरफ, मगर वो उस अलवसवास और खन्नास अभी बच्चों ने सब ने एक ही सूरत पढ़ी, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवास खन्नास। ये वसवास खन्नास जो हुक्म देता है ज़रा सा इशारा किया और उसी पर हम चल पड़ते हैं। सारी तकदीर जो किसी ने उम्र भर माँ ने बाप ने अपने मुरब्बी ने अपने उस्ताद ने अपने शेख ने समझाया होगा सब एक तरफ, और जो इबलीस अंदर से पिन लगाता है वो एक तरफ, वो कामयाब हो जाता है। तो हर इंसान जिन्नात और इंसान जितने मुकल्लब हैं सब के लिए अगर कोई मुसीबत है दुनिया में सबसे बड़ी तो यही है, जिसमें हर वक्त इब्तिला है। इस वक्त यहाँ बैठे हुए अब भी इब्तिला, मैं भी आप भी, मेरे दिल में भी वही वसवसा डाल रहा है कि मैं अच्छे से अच्छा बयान करूँ कि लोग जाकर वाह वाह करें। इसीलिए तो हजरत तवील अरसा लिखा है, तवील अरसा, और तवील अरसे में आपने पान वालों को देखा होगा कि एक तरफ मुंह में पान रखा हुआ है, एक तरफ दांत फूला हुआ है और उसी के साथ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अस्सलाम वालेकुम न बोल सके तो उसको बिगाड़ देंगे, पान ठीक से बोला भी नहीं जा सकता। तो इस तरह हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पत्थर रखा करते थे मुंह में और फरमाते थे कि ये सबसे बड़ी मुसीबत ये जुबान है, और उसको काबू अगर इंसान कर ले तो वो है कामयाब। फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कितना तवील अरसा, कितने 20 बरस तक जब कोई देखता तो मुंह में वो पत्थर रखा हुआ है तो इशारे से जो कुछ जवाब देना हाँ ना बस फिनिश, बोलते ही नहीं थे। इसीलिए हदीस मुबारक भी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला उन्हों से सबसे कम रिवायत की गई और सहाबे किराम के मुकाबले में जो आप के नाम से कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मतलब 31 में पहुँचा। जब खलीफे सानी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िमाम संभाली लगाम संभाली तो हज़रत अमीर उल्मुमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहते पत्थर रखा करते थे उसको काबू करने के लिए। और ये जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल 20 बरस तक रहा इसको काबू करने के लिए 20 बरस, तो यहाँ से सूफिया किराम ने हजरत इमाम अबूनी पर रहमतुल्लाह अलैह जैसे तमाम अइमा किराम ने इस चीज में उनको मुब्तदा बनाया कि पहले जो इन हमने हासिल कर लिया तो अब इस इल्म पर हम अमल करें। इसीलिए उम्र बिनी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाह ताला अन्हा के पास कोई नौजवान हाजिर हुआ, उसने कुछ सवाल किए, इल्मी सवाल कि अम्मा जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल इसमें क्या था, इसमें क्या था। रिवायत में आता है कि एक दफे उम्र बिनी उनका बिगड़ी और फरमाया, बेटे ये तो बताओ कि ये जितना जो कुछ अब तक तुमने मुझसे पूछा तुम उस पर पूरे तौर पर अमल कर चुके। उनको तो मसूर किल का यहाँ था और उसको इकट्ठा करना था। खामोश और फरमाया के जाओ, पहले जो कुछ आपने हासिल किया पहले उस पर अमल करो, उसके बाद फिर मेरे पास आओ। अब ये जितना मजमा यहाँ बैठा है दीन इस्लाम को मुताल्लिक कितना सारा इल्म है, कितनी सारी चीज़ों का इल्म है। कलिमे तैयबा जो असली उसूल है, बुनियाद, उसकी तबीयत कितनी बड़ी है। मस्जिद से सुनते हैं, इकामत करते हुए वो मस्जिद से सुनते हैं, माँ बाप ने सबसे पहले यही कलिमा सिखाया और कितनी जगह अपने आप खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजाई बयान करवाई इस कलिमे की, कितनी जगह अपने इसकी तिलावत की और इसकी तकरार की और इसका हक अदा किया। तो यहां से लेकर एक एक चीज के मुतालिक हुई जो बैठा हुआ है वसवास करना होकर नहीं देता। उस आप बैठे हुए हैं तो मेरी जुबान चले तीन चार बजे तो मैंने कह दिया और ये गोश्त का लोथड़ा बनाया भी ऐसा कि उसमें कोई कमी भी नहीं, लेकिन नहीं कर सकते। कैसा जादू है उसका। इसीलिए कुरान करीम ने आखिरी सूरत में सब की नब्ज पर भाग कि वसवासुल खन्नास जिधर जाता है तुम उधर उसी का दामन तुमने अच्छा काम रखा है। काका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़कर, कुरान को छोड़कर उसके पीछे लगे हुए लोग हर चीज में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, जैसा इच्छा कुछ नहीं कर पाते। और मैंने किया इसीलिए इमाम आदम अवली का रहमतुल्लाह अलैह और उनके उनसे जिन्होंने ये रंग इख्तियार किया सब ने, दाऊद ताई और एक लंबी फहरिस्त है, तो उन्होंने सब ने चिल्ले शुरू किए 20 बरस इसके लिए वक्फ कर दिए कि 20 बरस तक हमें सिर्फ अमल करना है। इसीलिए आदिम फरमाते हैं मजाक उड़ाते हुए, ये सब हर इल्म है आप और मैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, इल्म सबके पास है और जितना है उस पर अमल किया किसी ने, किसी चीज में नहीं किया। जुबान चलाने में जुबान को तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा, जहाँ नजर उठाना है मालिक की किब्रियाई देखने के लिए आसमानों को देखो, रोते रहो और गुनाहों को याद करके ये मुगलिया एम्पायर के जो सलातीन रहे उनमें इल्मी एतबार से सबसे ऊंचा इंसान कौन, हुमायूं आलमगीर, तो उनके हुमायूं के मुकाबले में बहुत नीचे। तो हुमायूं ने मुझे कुछ मैं नहीं बोल पाऊँ, इस वक्त बहुत बड़ा फितना चल रहा है शियों की शरारत की वजह से। अहले सुन्नत में जगह जगह आदमी बिठाए गए कि जो उनकी बोली बोलते हैं, जो हरकतें वो करते हैं उसके मुताबिक हरकतें, बड़ी बड़ी दरसगाहों में बैठकर, बड़े मशहूर मिंबरों पर बैठकर, कहाँ तक जरूरत हो गई उनको कि कोई किस सहाबी के हक में क्या क्या बकवास कर रहा है, कोई हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में मुस्ताफी करता है। तो ये हुमायूं ने अपने ज़माने में देखा कि सहाबी किराम में सबसे ज़्यादा अगर किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, उनका हक अदा नहीं किया जा रहा, तो वह हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो उन्होंने अल्लामा इब्ने हजर को इस पर मामूर किया। अल्लामा इब्ने हजर दो हैं, एक बुखारी के शारह हैं, फतहुल बारी के मुसन्निफ अल्लामा इब्ने हजर, और दूसरे अल्लामा इब्ने हजर मक्की हैं। तो अल्लामा इब्ने हजर मक्की को हुमायूं ने मामूर फरमाया, मुस्तकिल उनसे दरख्वास्त की कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबुल वही हैं, खुसूसी खुदाम में रहे हैं, उनके हालात और उनके फ़ज़ाइल कलम बंद कर किताब लिखवाई। तो जब अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने वो किताब लिखने शुरू की तो हुमायूं के मुताल्लिक वो लिखते हैं कि हुमायूं कौन है। मैंने कहा कि हमारी जुबानों को, आँखों को, हर चीज़ को, दिल को, हर चीज़ को वह वसवासुल खन्नास अपने कंट्रोल में किए हुए, अपने इशारे पर, उसी के इशारे पर हम चलते हैं, जिस तरह वो हमें ले जाता है जिधर हमारे पैरों को उधर हम चलते हैं। तो उन्होंने अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने हुमायूं की तारीफ करते हुए कि एक हुक्मरान ने, हिंदुस्तान के हुक्मरान ने मुझे इस पर मामूर फरमाया कि मैं हज़रत मुआविया की शान में किताब लिखूँ, उनके फ़ज़ाइल पर किताब लिखूँ। और वो हुक्मरान वो है कि जिसने 18 बरस से नज़र ज़मीन से नज़र ऊपर नहीं की, आसमान नहीं देखा। हुमायूं को अपने गुनाहों का किस कदर एहसास होगा, हमारे शर्म के हर वक्त ज़मीन की तरफ निगाह। हमने हमारे उस्ताद को देखा उमर भर, हज़रत मौलाना इस्माइल सरकार रहमतुल्लाह ने, जिनसे हमने कुरान यूज़ किया, कि जब कभी आप उनको देखो तो उनकी नज़र सजदे की जगह पर। और भी बुज़ुर्गों को देखा कि बिल्कुल सजदे की जगह पर उनकी नज़र अचल रहे हैं, दाएं बाएं आगे पीछे सामने क्या आ जाएगा, किसे टक्कर लग जाएगी, कोई पड़ी नहीं, बस फिक्र इसी का कि मुझे यही गढ़ना है, यही मरना है और यही मेरा ठिकाना है, उसी का मुराकबा मौत ही कार। और हुमायूं ने कहते हैं कभी आसमान की तरफ निगाह नहीं की, देखा नहीं। 18 बरस की मुद्दत उन्होंने लिखी है अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। तो ये जो मरज़ है इंसानों में, उसको कुरान करीम ने आखिरी सूरत में जिन्नात और इंसानों के मुताबिक साफ साफ फरमाया, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ तमाम इंसानों के रब की, जो तमाम इंसानों का हुक्मरान भी है, उसी की बादशाहत चलती है, उसके सिवा किसी के सामने सर झुकाने और माता निषेध करने की इजाजत नहीं सिवाय उसके, वही एक यक्ता मागूद है। और इतने सारी सिफात का वास्ता क्यों देना पड़ा? रब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास, तो बहुत बड़ी मुसीबत पेश आ गई। इलाही मैं मुसीबत में हूँ कि मेरा पीछा छोड़ता नहीं है। अल वसवास अन्नास अल्लज़ी वसविस फी सुदूरिन नास, हर वक्त यहाँ अंदर पहुँचकर दिल तक पहुँचकर वसवसे डालता रहता है, ना नमाज पढ़ने देता है। जिस तरह वसवसे डालता है उसी के मुताबिक इंसान गुनाहों में मुबतला होता रहता है। मैंने अर्ज किया कि इसीलिए हम न एक दफे कलिमा पढ़ सकते हैं, न कोई नमाज पढ़ सकते हैं। उस दिन मैंने वहाँ बयान में कहा कि हमारे लिए तो फराइज हमसे अदा नहीं होती, और हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही ने रहमतुल्लाहि अलैह के हालात में लिखा है कि हजरत गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह का सारी जिंदगी का मामूल था कि अभी हमने मगरिब की नमाज पढ़ी, हम तो वैसे ही बक बक कर रहे हैं। और हजरत का मामूल ये था कि मगरिब की नमाज पढ़ी, दो सुन्नतें पढ़ी, तो कोई तो दो और नफल पढ़कर ख़त्म करता है, कोई ज़्यादा पढ़ेगा तो चार पढ़कर ख़त्म करेगा, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ेगा तो छः अवाबीन पढ़कर ख़त्म करेगा। लेकिन इमाम रब्बानी हजरत गंगोही का सारी उम्र मामूल रहा कि मगरिब की नमाज पढ़ी, और भी जिस तरह के रमज़ान में हम इशा के बाद तरावी 20 रकत पढ़ते हैं, तो रोज़ मगरिब की नमाज के बाद उनकी ये 20 रकत नफलें होती थी, कभी कज़ा नहीं होती। कितनी हिम्मत, कितना आसान उनके लिए, और हमारे लिए कितना मुश्किल। एक बुजुर्ग के मुताले लिखा है कि वो हज में तशरीफ ले गए, अल्लाह ने मुसा कता फरमाई, एक हज किया, दूसरा हज किया, तीसरा हज किया, कहते हज पर जाते रहे। और उस जमाने के हज गालिबन खुरासानी बुजुर्ग का किस्सा है, जो काबुल की तरफ से लोग जाते थे सफर करके, कितना लंबा सफर, कितना मुश्किल तरीन सफर। कहते हैं 10 हज किए, 10 हज जब पूरे हुए तो नियत की कि इलाही ये जो मैंने 10 हज किए ये सारे तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी तरफ से हदिया और नजर आना। फिर उसके बाद जो हज शुरू किए तो उन्होंने सबसे पहला उसके बाद वाला हज हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, दूसरा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, तीसरे साल में गए सैयदना अमीर उमिनीन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, चौथे साल गए तो सैयदना अमीर उमिनीन हजरत अली करमल्ला वजह के लिए। तो जो 10 सहाबे किराम हैं अशर मुबशरा المشهود لهم بالجنة کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جوش میں ایک ہی مجلس میں فرمایا ابو بکر فی الجنة، عمر فی الجنة، عثمان فی الجنة، علی فی الجنة، تو جو 10 صحابہ کرام کے نام لے کر گنوایا اور ان کے لیے جنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا، تو ان سب کے لیے ایک ایک حج کیا۔ जब ये 20 हज जिस तरह के वो 20-20 साल रात दिन अल्लाह की इबादत में मसरूफ अपने आप को रखते थे, और जिस तरह रमजान आता है तो आप मौतकिफिन को देखते हैं कि वो मसरूफ रहते हैं अल्लाह की याद में, हर वक्त जिक्र इबादत तिलावत नमाज मस्जिद के अंदर ही इबादत ही में मसरूफ है, कभी निकलना नहीं बाहर, कभी किसी से बातचीत नहीं। हमारे पीर साहब हजरत मौलाना तलहा साहब अल्लाह ताला हजरत पीर साहब की उम्र में बरकत दे, तो उनका तो ख़ास तौर पर मामूल था कि जब एहतिकाफ में होते थे, एहतिकाफ में मस्जिद से निकले तो निकलते वक्त रुमाल सर पर डाल लेते थे लंबा सा कि कोई देखे भी नहीं और करीब आने की कोशिश ना करे। फिर भी अगर कोई आकर कुछ कहना चाहता तो इशारे से मना करवा देते। तो इस दर्जे एहतियात वाला एहतिका तो ये उनका मुसलसल एहतिका 20 बरस तक वो पाई भी और ये सब अपने नफ्स को सिराते मुस्तकीम पर डालने के लिए सीधी राह पर डालने के लिए अपने लिए ज़रूरी समझते थे। एक आध चिल्ला दो चिल्ले सात चिल्ले दस चिल्ले नहीं बल्कि 20 बरस मुतय्यन था उनके यहाँ। उसके बाद फिर जब मुनासिब समझते अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें तंबीह की जाती कि अब तो बाहर आओ तो हसन मिस्री की तरह से फिर कुछ दुनिया उनसे बेजियाब हो सकती थी वरना उन्हें 20 साल अपने लिए वो ज़रूरी समझते थे। क्योंकि अगर हाजिम फरमाते हैं उलमा के मुताबिक ख़ास तौर पर फरमाया कि रदू बिलकौल मिन अलअमल कहते हैं कि ये अहले इल्म की जमात बड़ी अजीब कहते हैं कि वो अपने उज़्र बनाए हुए हैं कि हम तो बस मसरूफ रहते हैं इल्म में हमें फुर्सत नहीं है। तो कहते हैं कौल कौल में कब तक लगे रहेंगे अमल कब करेंगे। वह रदू बिल फ़िल रदू बिल कौल मिन अलअमल मिन अलफ़िल अमल और फैल करने की नौबत भी कब आएगी तुम इसी में लगे हुए हो। तो दोस्तों ये जो सूरत है इसे बार बार पढ़ते रहें और इसको सोच कर पढ़ा करें मुरातबे की तरह इसको सोचें पहले तेरे कलाम में हमारा मरज बिल्कुल सही बयान किया इस सूरत में मैं भी इसी में गिरफ्तार हूँ हर वक्त इसी इंग्लिस के हुक्म पर मैं चलता रहता हूँ जिस तरह वो मुझे जहाँ ले जाता है उसी के ऑर्डर पर मैंने अब तक चलना सीखा है। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ तू मुझे अपनी पनाह में ले ले। पनाह का सही तर्जुमा क्या होता है कि बच्चा जा रहा हो कुत्ते को देखकर जिस तरह माँ से लिपट जाता है इस तरह लिपट जाए इंसान सोचे कि मालिक के सिवा मुझे बचाने वाला कोई नहीं ना मेरा बाप ना मेरी माँ ना मेरा उस्ताद ना मेरा पीर। अगर इस बला से इबलीस से कोई बचा सकता है गुनाह से मुझे तो सिर्फ इलाही तू ही मुझे बचा सकता है। इसलिए इन किसी ने किराम ने इस गुरु को समझा और उन्होंने इन उलमाए किराम को सही राह रास्त पर लाने की कोशिश की। मैंने तो हज़रत अमीर उमरीन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल बताना शुरू किया था कि वो अपनी ज़ुबान को काबू में रखने के लिए पत्थर रख लेते थे। अब हज़ार ताबीरें सोचेंगे कि अरे पत्थर निकल गया तो गले में फंस जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन वो तो समझते थे कि चाहे मैं मर जाऊँ लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इसी को काबू में करूँ और इसको चलने न दूँ। क्यों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि माँ यकूनान के लोगों को जहन्नम में फरिश्ते ऊंधा ऊंधे मुंह डालेंगे पैर पकड़ेंगे सब नीचे और आग में फेंका जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शक्ल में जहन्नम में लोगों को क्यों फेंका जाएगा क्या वजह होगी फरमाया कि ये ज़ुबान बेहुदा चलती रही हरान उससे हर वक्त खेतियाँ कर रही हैं और अपने लिए अपने नामे आमाल को वो सियाह किए जा रहा है। तो उससे बचने के लिए उन्होंने आज शेखैन ने ये सुन्नत जारी करवाई अपने मुँह में पान की तरह से एक पत्थर रख लो اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے حضرت امام الاولیاء حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مولانا حلیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ عز و جل نے ان کے کلمات میں، ان کی آواز میں، ان کی نصیحت میں اتنا نور رکھا ہوا تھا، جو بھی ایک دفعہ پہنچتا تو وہ گردیدہ ہو جاتا. اور کتنے سارے واقعات پھر آگے حضرت نے خود بھی گنوائے اور سناتے تھے کہ فلاں موقع پر ایسا ہوا، فلاں موقع پر ایسا ہوا. تو ایک دفعہ حضرت کا معمول یہ تھا کہ جہاں کہیں حضرت تو مدرسے والے وضو کر گئے تو حضرت اپنے گھر سے گھر کی روٹی جیب میں ڈال کر جاتے. پنجاب کے حکمرانوں میں بڑا مشہور نواب کالا باغ بہت مشہور گزرا ہے، نکاح کی تقریب تھی، اس نے مشورہ چاہا تو ساتھیوں نے کہا کہ لاہوری اگر دعوت قبول فرما رہے ہیں تو تمہاری قسمت جان رہے ہیں. تو لکھا ہے کہ حضرت ان کے یہاں بھی تشریف لے گئے تو اسی شرط کے ساتھ کہ میں تمہارے آؤں گا، اپنی روٹی ساتھ لے کر آؤں گا، میں تمہارے دسترخوان سے کھانا نہیں کھاؤں. اور کیوں نہیں کھاتے تھے اس کے میں نے گزشتہ کر واقعات سنا ہے کہ حضرت دیکھ لیتے تھے، ہر بار دیکھ لیتے تھے. اور جیسے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا علی میاں صاحب کو رنگ دیا اور وہ رنگ کیسا چڑھا ہے، حضرت کو کس قدر نفرت ہو گئی بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے حضرت مولانا علی میاں صاحب لگن. لیکن دنیا بالکل کسی قسم سے ذرہ بھر اثر نہیں کر سکتا. ایک دفعہ حضرت مولانا علی میاں صاحب وہاں سعودیہ میں پتا چلا حکومت کو کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، تو ملک فہد نے اپنے یہاں دسترخوان پر حضرت کو دعوت دی کہ آج کھانا اکٹھا ہمارے ساتھ کھائیں. تو حضرت نے دعوت قبول فرما لی. حضرت شیخ قدس سے لوگ کہ یہاں فیصل کے زمانے میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ سرکاری دعوت نامہ آتا تھا کہ حضرت وہاں ہمارے مہمان ہیں اور کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، لیکن حضرت تشریف دین لے لی ہے. تو حضرت مولانا علی میاں صاحب کو ملک فہد نے دعوت دی اور تشریف لے گئے. تو کھانے کے دوران میں حضرت مولانا علی میاں صاحب لقمے ہاتھ سے اٹھا کر کھا رہے ہیں اور باقی سارا مجمع چمچ سے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی چھری کانٹا اور چمچ دونوں سے کھا رہا ہے، الگ الگ تین قسم کے انداز ہیں. تو حضرت مولانا علی میاں صاحب اپنے بچپن سے جس طرح تربیت کی اسی طرح کھانا شروع کیا. تو اسی کو نوٹ کر کے ملک فہد نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ براہ راست سعودیہ پر غیروں کی حکمرانی کبھی نہیں ہوئی، صرف مسلمانوں ہی کے قبضے میں اللہ عز و جل نے اسے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے محفوظ رکھے.
آمین.
حجاز مقدس کو، سعودیہ کو، حرمین شریفین کو اللہ عز و جل ہر قسم کی شرارتوں سے، خباثتوں سے، گندگیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
آمین.
تو انہوں نے ملک فہد نے پوچھا حضرت مولانا علی میاں صاحب سے کہ حضرت کیا بات ہے کہ ہم پر غیر حکمران نہیں ہوئے اور ہم کیوں بدل گئے؟ انہیں احساس ہوا کہ مغربی تہذیب، نام لیا انہوں نے کہ مغربی تہذیب کا اثر ہم نے کیسے اور کیوں اور کہاں سے قبول کیا.
कितने खामोश दावत को अली मियां साहब की कैसे बादशाह को असर कर गई। तो ये हजरत मौलाना अली मियां साहब को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बहुत सी बात अता फरमाई थी। एक दफे वहाँ जलसा हो रहा था लखनऊ में, जिस तरह दारुल देवबंद का सब सारा इजलास 100 साल पूरे हुए उसका जलसा रखा गया था, तो उससे पहले वहाँ नदवतुल उलमा लखनऊ में सत्शाला के नाम से तो नहीं था, मगर हजरत मौलाना अली मियां साहब ने जहाँ जहाँ हजरत मेहमान रहे जिन मुल्कों में, और वो जो हजरत की वहाँ बयानात होते थे वो बहुत शानदार है। किसी का नाम रखा हजरत ने इस्माइलिया मिस्र, ए मिस्र तो सुन, पूरे पूरी किताब का नाम इस्माइलिया मिस्र, ए मिस्र तो सुन, और जो कलिमात उस वक्त जैसे फरमाए थे उस मुल्क का हाल उसी तरह हो जैसे वहाँ तबलीगी जमात के साथ हजरत रंगून तशरीफ ले लें तो हम 60s के शुरू में रांगे में ये बयान सुनते रहते थे जो हजरत मौलाना अली मियां साहब ने बर्मा में किया, जिस ज़माने में बर्मा रंगून में एक बाज़ार का नाम था सूरती बाज़ार, जिस तरह ये इक्तिसादी तौर पर दुनिया का कोई इलाका बड़ा मशहूर होता है कि सारा हर चीज़ का भाव उस वहाँ के बाज़ार से चलता है और दुनिया उसी की तरफ निगाह रखती है, सुबह उठती है तो कि भाई वहाँ आज सोने का बाज़ार क्या है, उस सोने का भाव क्या है, नमक का भाव क्या है, कपड़े का क्या है, हर चीज़ का भाव वहाँ से। तो इसी ज़माने में ये जो रंगून बर्मा में सूरती बाज़ार था उसकी ये हैसियत थी, पोजीशन थी इक्तिसादी तौर, और वो सारे ताजिर उस बाज़ार के मालिक खान मुसलमान थे। तो उस ज़माने में हजरत वहाँ तशरीफ ले गए जब उसकी अजमत का दौर था, तो हजरत ने वहाँ उस ज़माने में जो तकलीफ फरमाई उसके बिल्कुल बरक्स उस हाल से मुतासिर नहीं हुए जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनको दुनियावी नेमतों से मालामाल कर रखा था, उसको एक तरफ छोड़कर हजरत ने उनसे फरमाया कि मेरे दोस्तों एक बात सुनो, अगर तुमने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए कोई वक्त नहीं निकाला और तुमने अपने अतराफ़ या जवानी में जो बुराइयां हैं, जो खबासतें हैं, गंदगियां हैं, उसे साफ़ करने की तरफ तुमने तवज्जो नहीं दी और दावत का काम नहीं किया, तो याद रखो कि एक वक्त आने वाला है कि इनमें से कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं रहेगी। और एक एक चीज़ फिर हजरत थोड़ी देर बाद इरशाद फरमाते हैं कि ये मैं कोई ऐसा रोशन ज़मीन इंसान नहीं हूँ जो 10 साल पहले की बात देख लेते हैं, बल्कि ये तो ऐसा इतनी नुमाया है और इतनी साफ चीज़ है कि जैसे कि कोई बादल देखे और कहे कि बारिश आने वाली है, कहते हैं उसे कोई वली नहीं कहता, इसने पेशीनगोई की थी और बारिश हो गई। तो इस तरह मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये हालात बदलने वाले हैं और उसके हजरत के इस बयान को 10-12 बरस नहीं गुजरे और वो इंकलाब आ गए, फौजी इंकलाब आया और उसने हुकूमत का तख्ता उलटा और उस वक्त हालात बिगड़े, तो बिगड़ते भी वहाँ के हालात आप देखें क्या से क्या हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मालिक की तरफ रुजू की तौफीक अता फरमाए और हर वक्त इस सूरत के मज़मून को सोचते रहें और इसी सोच के साथ पढ़ें कि जिस तरह कोई आदमी भाग रहा हो, कहीं आग लगी है, कहीं जलजला आया है, कहीं बड़ी आफत और मुसीबत और क़यामत आ गई है, और उस वक्त में जिस तरह भाग कर मालिक को याद करें उसी अंदाज में रब्बिन नास, उसको बार बार दोहराए, रोते हुए दोहराए रब्बिन नास मलिकिन नास इलाही नास, پھر آگے مصیبت من شردی, کیا مصیبت؟ من شردی الوسواس الخناس الذی یوسوس الہی, وہ میرے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ تو فلاں طرف دے, اور نظر اس طرف گئی اور وہ نظر, ایک نظر نے اپنا کام کر لیا اور گناہ میں انسان پھنس گیا. میری آنکھوں کی حفاظت فرما, میرے دل کی حفاظت فرما, میرے ہاتھوں کی حفاظت فرما, میرے قدم کی حفاظت فرما, میری دھڑکن کی حفاظت فرما. یہ سب ہر وقت ہماری دھڑکن ہے دل کی سوچ, وہ اگر بہتر ہو جائے. اس لیے شر وسواس الذی یوسوس فی صدور الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کرام کو قبول فرمائے, ان کے فارغ ہونے والے طلبہ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت پہچاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جن ہاتھوں سے یہ قرآن کریم, جن واسطوں سے, صحابہ کرام کے واسطوں سے ہمیں پہنچا, تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہماری طرف سے حفظ رضائے خیر عطا فرمائے.
الہ الا اللہ.